नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इसराइल के बीच मजबूत और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि और गतिशीलता आई है। इसराइल की दो दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होने से पहले वक्तव्य में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, जल प्रबंधन, रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए होने वाली चर्चाओं के लिए उत्सुकता जताई। उन्होंने कहा कि इस दौरान पारस्परिक हित के क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए भी उत्सुकता जताई, जिन्होंने लंबे समय से भारत इसराइल की विशेष मैत्री को प्रोत्साहन दिया है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि यात्रा दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों को और मजबूत करेगी, रणनीतिक साझेदारी के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेगी और लचीले, नवोन्मेषी और समृद्ध भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री आज सुबह दो दिन की राजकीय यात्रा पर इसराइल रवाना होंगे। श्री मोदी की ये दूसरी इसराइल यात्रा होगी। भारत और इसराइल ने आतंकवाद और आतंकी संगठनों, उनके समर्थकों, प्रायोजकों, वित्त पोषकों और मददगारों से निपटने में सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। कल नई दिल्ली में आयोजित भारत इसराइल संयुक्त कार्यवाही JWG की आतंकरोधी 10वीं बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए लगातार व्यापक और समन्वित कार्यवाही की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट।
इस बैठक में भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया गया। दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों से संयुक्त रूप से लड़ने की अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने इसराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हुए आतंकी हमले और जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के साथ अन्य हालिया हमलों की भी निंदा की। उन्होंने आतंकवादी भर्ती, प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग, आतंकवाद वित्त पोषण और आतंकी गतिविधियों के लिए मानव रहित हवाई वाहनों, ड्रोन और AI के बढ़ते उपयोग जैसे उभरते खतरों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक इसराइल में आयोजित करने का निर्णय लिया। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी कि आर्थिक कार्य समिति ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के 8 जिलों में रेलवे की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। समिति ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रस्तावित सिविल एनक्लेव के विकास को भी स्वीकृति दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर मुंबई पहुंची। राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन करेंगी। ये मेला आयुष मंत्रालय ने बुल्ढाना जिले के शेगांव में आयोजित किया है। वे राज्य स्तरीय पहल एकता और विश्वास के जरिए महाराष्ट्र का स्वर्णयुग के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगी। इसका आयोजन नागपुर में ब्रह्म कुमारी समाज ने किया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने हाल ही में बढ़ती विमान दुर्घटनाओं के बीच चार्टर्ड विमानों के संचालकों के लिए नए कड़े सुरक्षा निर्देशों की घोषणा की है। कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला किया गया। DGCA ने कहा कि चार्टर्ड और VIP उड़ानों सहित सभी गैर अधिसूचित उड़ानों के बारे में सुरक्षा के आधार पर कमांडर पायलट का फैसला अंतिम होगा। DGCA सुरक्षा रैंकिंग, कॉकपिट, वॉयस रिकॉर्डर और डाटा ऑडिट की शुरुआत करेगा। सिस्टम में किसी भी तरह की खामी के लिए वरिष्ठ प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के कल्याण के लिए राज्यों को आवंटित धनराशि का 31 मार्च तक 100% उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में कई राज्यों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में ये बात कही। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित यशोदा मेडिसिटी में अत्याधुनिक AI सक्षम EICU कमांड सेंटर का उद्घाटन किया। इस पहल से जिला अस्पताल स्तर पर गहन चिकित्सा सेवाओं को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल, पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम के आह्वान का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। 193 सदस्यीय महासभा में से 107 देशों ने मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में और 12 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। भारत, बहरीन, बांग्लादेश सहित 51 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।